विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य श्रोतर सत इष्टवान ग्रेस अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गोवर्धन परिक्रमा की जय। श्री कुसुम सरोवर की जय। निताय गौ प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। यहां से हम गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करने वाले हैं। आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा पहले कभी की नहीं है? जिन्होंने नहीं किया है आज तक गोवर्धन परिक्रमा, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है। थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए आपको बताएं कि वराह पुराण में ऐसे कहा गया है कि जो गोवर्धन परिक्रमा करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। आपको पुनर्जन्म लेना है? नहीं लेना। तो गोवर्धन परिक्रमा करना है, थोड़ी तकलीफ होगी फिर भी करना है। थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट दिए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हालांकि केवल तपस्या से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु थोड़ी बहुत तपस्या तो होनी चाहिए। ऐसी तपस्या जो भक्ति युक्त हो, के नियमों में पाद सेवनम ये एक अंग है नवधा भक्ति में, जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो पाद सेवनम में भगवान के मंदिर में जाना, मंदिरों की परिक्रमा करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करना, ये भी सब शामिल हैं। तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं या व्रज धाम में हम चलते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग निभा रहे हैं। ये भक्तियुक्त तपस्या बहुत ही हृदय से करनी चाहिए ना है। तो जो चल के कर सकते हैं तो ये उत्तम होगा। अगर आप में से कोई शारीरिक दुर्बलता की वजह से या बढ़ते हुए आयु की वजह से या छोटे बच्चों के साथ में होने के कारण से पूरी परिक्रमा आप पैदल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कोई रिक्शा होते हैं जिनके पीछे आप बैठ के जा सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर लोग जाते हैं, ऐसे आप थोड़ा समय के लिए कर सकते हैं। और अगर आप बिना जूते चप्पल के आप चल सकते हैं तो सबसे अच्छा है। बल्कि यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यूं ही चलें जूते और चप्पल के। कृपया ये भी प्रयास कीजिए तुम के साथ साथ चलें। बल्कि ये हमारा एक नियम सारे परिक्रमा में होना चाहिए, केवल गोवर्धन परिक्रमा नहीं, सारे ब्रजभूमि के परिक्रमा में। कोई भक्त अन्य भक्तों के ग्रुप से अलग कहीं एकत्र अलग से कहीं स्वतंत्र रूप से नहीं जाएं, यहाँ कोई दुकान में, यहाँ कोई दूसरे कोई मंदिर में या और कहीं इधर उधर कृपया आप नहीं जाइए। सारे भक्तों के साथ में ही आप रहिए। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान में हम जाते हैं या परिक्रमा कर रहे होते हैं तो कृपया इधर उधर समय मत बिताइए। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो उसकी वजह से धीरे आ रहे हैं तो वो एक बात है, परंतु केवल इधर देखना उधर जाने के से अच्छा ये होगा कि आप भक्तों के साथ में रहिए। क्योंकि ये भक्त करीब 380-400 भक्तों की संख्या है यहाँ पर, तो सबको साथ में ले जाना बहुत मुश्किल है। अगर भक्त इधर उधर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे भी अगर तेज गति से कोई चलता है तो 5-6 घंटे से कम गोवर्धन परिक्रमा को नहीं लगता है, और ये बिना कथा के। तो ये तो संभव नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि इतने सारे भक्तों को लेकर। इसलिए हम आज गोवर्धन परिक्रमा आधी करेंगे और कल फिर आधी करेंगे, जो बाकी है आधा वो हम कल करेंगे। तो जिस स्थान से हम आज परिक्रमा छोड़ देंगे उसी स्थान से हम कल पुनः आरंभ करेंगे। जगह जगह पर हम कथाएं करेंगे। वैसे तो कथाएं अनेक हैं गोवर्धन के बारे में, परंतु इतना समय नहीं हो पाएगा। वैसे अगर कथा के साथ पूरी तरह से संतुष्ट होकर कथा भी होना है परिक्रमा भी होना है तो इसके लिए एक सप्ताह लगेगा। आप तैयार हैं एक सप्ताह के लिए? तो टिकट कैंसिल करा दीजिए और अभी एक सप्ताह हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। थोड़ा समय के लिए जाएंगे, कथा परिक्रमा होगी, फिर वहां से आगे चलते 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 7 दिन। लेकिन उतना समय शायद सबके पास नहीं है, इसलिए हम 2 दिन में ही समाप्त करेंगे। तो जगह जगह पर कथा काफी संक्षिप्त रूप में कहना पड़ेगा, क्योंकि उतना समय नहीं होगा पूर्ण कथा करने के लिए। लेकिन जितना हो सके हम जल्दी जल्दी से बताते बताते जाएंगे। कई बार हमें ऐसे करना होगा कि केवल इशारे से दिखाना होगा कि ये लीला वहां पर हुई थी, फिर हम आगे चलेंगे, फिर वो लीला वहां पर हुई थी, फिर से जल्दी से आगे चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको ऐसे वर्णन सुनने हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी चलना पड़े सब भक्तों के साथ में रहने के लिए, फिर आप सुन पाएंगे। वैसे हम प्रयास करेंगे बिल्कुल जल्दी नहीं चले, ताकि पीछे रहने वाले भक्त भी साथ में आ सकें, और जगह जगह पर हम थोड़ा रुकेंगे ताकि पीछे रहने वाले भक्त भी आ सकें सामने। प्रथम परिक्रमा के बारे में प्रश्न है तो आप अभी पूछिए। पूछने हैं? हाँ, थोड़े बहुत कांटे चुभेंगे, छोटे छोटे पत्थर भी चुभेंगे। आगे चल के जब सूरज और आसमान ऊपर आएगा तो गर्मी थोड़ा बहुत हो सकता है, कष्ट तो होगा थोड़ा, लेकिन इसे खुशी से स्वीकार कीजिए, प्रसन्नता से, ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न है परिक्रमा के बारे में, कोई नियम वगैरह? और याद रखिए कि इस परिक्रमा के दौरान बिल्कुल प्रज्वलित नहीं कीजिए, आपस में कोई बातचीत की आवश्यकता नहीं है, केवल जो हमारे परिक्रमा के लिए आवश्यक है उतना ही हम बातचीत करें, और ब्रज के बाहर की बातचीत तो बिल्कुल नहीं करें। और जाते जाते या कीर्तन होगा या जप होगा, और आगे चल के कथा होगी, बस इतना ही, ठीक है। कुसुम सरोवर परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं। हालांकि परिक्रमा वैसे मानसी गंगा से शुरू होती है, हम वहां पहुंचेंगे थोड़ी देर में, परंतु हम सबके लिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, सुविधाजनक यही स्थान है, इसलिए हम परिक्रमा यहां से आरंभ कर रहे हैं। ये बहुत प्राचीन सरोवर है, और यहां पे श्रीमती राधा रानी अपने गोपियों के साथ फूल तोड़ने के लिए आती थी, और यहां से कई बार गुजरती दिखती थी, आती जाती थी। यहां पे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ कई लीलाएं हुई हैं। ये सुंदर मंदिर यहां पे आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 140 वर्ष पूर्व एक राजपूत राजा थे जिनका नाम था जवाहर सिंह, शायद भरतपुर के थे वो, उन्होंने ये मंदिर बनाया। भगवान कृष्ण और उनके पिता राजा सूरजमल के स्मृति में, राजा सूरजमल एक बहुत प्रसिद्ध जाट राजा थे, इस इलाके के बहुत शूरवीर माने जाते थे। तो इस मंदिर में हम यहां नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं होगा हमारे पास, ऐसी दूर से आप देख सकते हैं। यहां राजा के शरीर के राख वगैरह पड़े हैं नीचे, साथ साथ में ऊपर मंदिर के अंदर वहां पर कृष्ण की लीलाओं के चित्र कई हैं, भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों के नकल भी वहां पर हैं, और पास में श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों के चरण चिन्ह भी वहां पर हैं, पर है, और उनके रानियों की समाधि भी शायद यहां पर हुई होगी इसी स्थान में। ऐसे बताया जाता है कि अष्टावक्र मुनि यहां पर तपस्या करते थे इस सरोवर के तट पर, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब द्वापर के अंत में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण यहां पर प्रकट होंगे और यहां पर लीला करेंगे, और उनका दर्शन करके फिर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। और यहां पास में शिव मंदिर है, शिव जी के मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि वो वही स्थान है जहां अष्टावक्र मुनि ने समाधि ली, वहां अपने प्राण को त्याग दिए। सरोवर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, विशेष करके इसलिए कि यहां का सौंदर्य कितना अधिक है। यहां पहले बहुत घने वन हुआ करते थे, पुष्प वन, जहां पर श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ फूल लेने के लिए आती थी। अभी तो वन ज्यादा रहे नहीं यहां पर, और ये घाट और ये मंदिर सब वो राजा जाट राजा ने बनाए थे यहां पर। जगह जगह जहां भी हम ब्रज में जाते हैं, हम देखते हैं कि इन राजपूत राजाओं का योगदान कितना रहा है। नेता हो तो ऐसे होने चाहिए, राजा जो नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं होते हैं तो ऐसे होने चाहिए, जो ऐसे आध्यात्मिक और भक्ति के संस्कृति की रक्षा के लिए इतना कुछ करते थे। धाम की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। यहां पर ऐसे भी लीला एक बार हुई कि श्रीमती राधा रानी यहां फूल तोड़ने के लिए आई थी, तो भगवान कृष्ण वहां आए। भगवान कृष्ण तो चाहते हैं कि जहां भी गोपियां जाए वहां पीछे जाए, उनको हैरान करें। तो श्री कृष्ण यहां आए, पूछने लगे कि कौन है जो फूल तोड़ रहे हैं यहां पर। तो श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया, मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मतलब कौन हो तुम? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि क्या मुझे पहचानते नहीं हो? तो कृष्ण ने कहा, अगर पहचानता तो ये प्रश्न पूछता क्यों? कृष्ण ने कहा, वैसे संवाद काफी लंबा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। राजा कंदर्प की संपत्ति है, कंदर्प जानते हैं ना कौन है? कामदेव। किसी और को फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। मैं यहाँ महाराज कंदर्प का प्रतिनिधि हूँ, यहाँ मैं रखवाले कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको मना है यहाँ फूल तोड़ना, और क्योंकि आपने बिना अनुमति से फूल तोड़े हैं इसलिए आपको दंड मिलना चाहिए। कर रहे हो कि आपको शर्म नहीं आती ऐसे चोरी करते हुए, दूसरों की संपत्ति चोरी करते हुए, ये ठीक नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी बोलने लगी, अरे तुम कौन होते हो ईमानदारी की बात हमें सिखाने के लिए? और चोरी करने की बात है तो गोपियों का वस्त्र हरण किसने किया था? गोपियों के कपड़े चोरी कर लिए और अभी हमें ईमानदारी का भाषण दे रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कृष्ण कहने लगा, देखो ऐसी बातें नहीं करना, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और साधु हैं, तो इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी साधु के साथ ऐसे बातें बोलने नहीं चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी बोलने लगी, हम जानते हैं अच्छी तरह से किस तरह के ब्रह्मचारी हो। वैसे देखो यहाँ कितनी कुंवारी लड़कियां हैं जो विवाह के योग्य हैं, और उनके माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से इनका विवाह हो। ऐसे योग्य कन्याएं बहुत हैं ब्रज में, लेकिन ऐसे कोई भी पालक जो है माता पिता इन लड़कियों का विवाह तुमसे नहीं कराना चाहते हैं। बोलो क्या कारण हो सकता है? कुछ तो होगा, इसका मतलब है तुम में बहुत दोष है, इसलिए ये माता पिता उनकी कन्याओं पुत्रियों का विवाह तुमसे नहीं करना चाहते हैं। तो तुम ब्रह्मचारी हो अपनी इच्छा से नहीं, और को उपाय नहीं है इसलिए ब्रह्मचारी हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी और उत्तर देने लगे कि अभी मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर रहना होगा तुम्हें, दंड देना होगा, जो कर है वो देना होगा। तो इस प्रकार से काफी बातचीत होती रही। आखिर में भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, यहाँ ललिता देवी को छोड़ जाओ। कहा मैं ललिता देवी को बुलाऊंगी और वो तुम्हारे साथ निपट लेगी तुम्हारे साथ। उस समय विशाखा देवी आई, विशाखा देवी ने ये झगड़ा जो है समाप्त कर दिया और दोनों के कपड़े बांधकर उनको राधाकुंड की ओर ले गई। तो ऐसी कई कथाएं यहाँ इस स्थान में हुई हैं। और पीछे ही इस स्थान में और एक जगह है जहां हम नहीं जाएंगे, उस तरफ है, यहां से दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको उद्धव बैठक कहते हैं। उद्धव जी वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे द्वारका में, बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे उनके, बल्कि द्वारका के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं उद्धव। उद्धव के तीन निवास स्थान बताए गए हैं, एक तो द्वारका में है, वो नित्य रूप से द्वारका में निवास करते हैं। दूसरा है बद्रिकाश्रम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उद्धव से ये अंतिम आदेश था। जब श्री कृष्ण तिरुभाव की तैयारी में थे तो उद्धव से उनकी चर्चा हुई और उद्धव को उन्होंने उपदेश दिया, और ये उपदेश श्रीमद् भागवत के 11वें एकादश स्कंद में पाया जाता है। तो इसलिए उद्धव बद्रिकाश्रम में भी नित्य रूप से निवास करते हैं। और तीसरा निवास स्थान उद्धव का है यहाँ पर ब्रज में, गोवर्धन के पास, कुसुम सरोवर के पास, और वहां पर उद्धव जी का एक मंदिर है, उद्धव जी की मूर्ति है वहां पर, और उस स्थान को उद्धव बैठक भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि वृंदावन के निवासी विरह में बहुत पीड़ित अवस्था में हैं, क्योंकि श्री कृष्ण लौटे नहीं हैं, तो उनको भी बहुत दुख हुआ। तो श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र मंत्री और भक्त उद्धव को भेजा वृंदावन कि उद्धव जाओ और वहां सारे ब्रजवासियों को सांत्वना दो और उनको कुछ समझाओ और कहो कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, इसलिए वो वहां दुख नहीं करें। उद्धव तो जाने माने भक्त हैं द्वारका के, हालांकि इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, परंतु श्री कृष्ण उद्धव को दिखलाना चाहते थे कि द्वारका के भक्ति से श्रेष्ठ ब्रजभूमि की भक्ति है। यहां वृंदावन के भक्तों की भक्ति अतुलनीय है, निराली है। वृंदावन के भक्तों की तरह कोई भक्ति नहीं कर सकता है सारे आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में, यहां तक कि वैकुंठ लोकों में नहीं, द्वारका लोक में नहीं, अयोध्या लोक में नहीं, मथुरा में नहीं, कहीं भी नहीं। तो भगवान कृष्ण उद्धव को दिखलाना चाहते थे कि प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कितना महान है और विशेष करके वृंदावन के गोपियों का प्रेम कितना महान है। तो उद्धव यहां पर आए इस तैयारी में कि उनको वो कुछ समझाएंगे, उनको बताएंगे, कुछ दिव्य ज्ञान देंगे जिससे कि उनका मन शांत हो जाए। जब उद्धव यहां पर आए, क्योंकि वो दिखने में कृष्ण की तरह ही थे, तो सबसे पहले तो ब्रजवासियों ने सोचा कि श्री कृष्ण लौट के आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। परंतु बाद में उनको पता चला कि ये श्री कृष्ण नहीं है, ये तो उद्धव है। फिर भी उद्धव श्री कृष्ण के इतने प्रिय मित्र होने के कारण उन्होंने उद्धव का भी स्वागत किया और फिर उद्धव ने धीरे धीरे से अपने भाषण शुरू किए तत्व ज्ञान के ऊपर और कहा कि कृष्ण आएंगे, चिंता नहीं करना। गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को ऐसे तत्व ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा हमें कृष्ण चाहिए, तत्व ज्ञान हमें देके हमें क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि ब्रजवासी सदैव 24 घंटे कृष्ण के विरह में रोया करते थे और अब यहां उद्धव कह रहे हैं कि मत रोना, तो ये एक विरोधाभास हो गया। शास्त्रों में बताया जाता है कि कृष्ण के लिए सबको रोना चाहिए और यहां ब्रजवासी रो रहे हैं और उद्धव कह रहे हैं मत रो, तो ये शास्त्रों से विरुद्ध कुछ हो रहा है। तो ब्रजवासीगण कह रहे थे हमें कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। तो उद्धव जब देख रहे थे कि ब्रजवासियों का भाव इतना तीव्र है, तो इतने प्रभावित हुए कि वो कुछ कह नहीं पाया आगे, और उन्होंने ये इच्छा मन में रखी कि मुझे यहां ब्रज में जन्म लेना है, एक घास के तिनके के रूप में, एक गुल्म लता के रूप में, ऐसे कोई नीच जन्म मुझे चाहिए। क्योंकि ये ब्रजवासी इतने महान हैं, मैं इनके साथ में रहने के योग्य नहीं हूं, बस इनके चरण धूलि मेरे सर के ऊपर प्राप्त हो जाए तो ये मेरे जीवन की परिपूर्णता होगी। परंतु उद्धव जानते थे कि ब्रजवासी उनके चरण धूलि नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना की कि मैं एक गुल्मलता, एक घास के तिनके के रूप में यहां पर सदैव ब्रज में निवास करूं, ताकि जब गोपियां आती जाती हैं तो उनके चरणों से धूल उड़ेगी और उनके न जानते हुए भी ये चरण धूलि मेरे सर का स्पर्श करेगी और मेरा उद्धार होगा और यही मेरे जीवन की सफलता होगी, जीवन की परिपूर्णता होगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे उद्धव की प्रार्थना थी। तो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपदेश देकर गए उद्धव अपनी प्रार्थना से कि कैसे हमें भगवान के प्रिय ब्रजवासी भक्तों के चरणों में धूलि होना, ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। न कि हम अभिलाषा करें कि हम बहुत बड़े भक्त हो जाएं, सब लोग हमको जान लें, नहीं। भक्त सच्चा वो है जो दासों के दासों के दास होना पसंद करता है, सबसे छोटा स्थान वो चाहता है। ऐसा नहीं कि भक्तों के समाज में भी वो अग्रणीय होना चाहता है, ऐसा नहीं है। ये तो भौतिक समाज की पहचान है जहाँ सभी लोग आगे आगे होना चाहते हैं। लेकिन उद्धव के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि भक्तों की भावना कैसे होनी चाहिए। तो उद्धव जी यहाँ पर गुल्मलता के रूप में सदैव निवास करते हैं यहाँ पास में उद्धव बैठक में, और यहाँ पे पास में अशोक वन भी है, और यहाँ पर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार भी करती थी, यहाँ कई साधुओं ने भक्तों ने तपस्या भी की है। और आगे जब भी परिक्रमा पथ में हम चलते जाएंगे और जैसे हम चलेंगे वहां पर बाईं ओर अंदर की ओर एक स्थान है जिसका नाम है नारद कुंड। परिक्रमा पथ से थोड़ा हटकर है ये, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन आप जान लीजिए केवल इतना कि वहां पर नारद कुंड है। नारद मुनि ये भी तो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन ये वैकुंठ भाव में हैं। इसलिए वो चाहते थे कि मैं तो वैकुंठ में आता जाता हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि की लीला भी देखनी है। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। शिव जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रज में अष्टकाली लीला जो है राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिव जी ने उनको एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि ब्रज में जाकर तपस्या करो, इस मंत्र का उच्चारण करो और फिर तुम्हारी वांछाओं की सिद्धि हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो नारद मुनि यहाँ पर आए और उस स्थान में जहाँ की ये कुंड है, अशोक वन है, वहां पर उस स्थान में वहां पर उन्होंने तपस्या की और शिव जी ने प्रदान किया वो मंत्र वो जपना भी शुरू किया। ऐसे थोड़ा समय बीत गया, फिर वहां पर वृंदा देवी अन्य गोपियों को लेकर आई। नारद मुनि को देखा, नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया वृंदा देवी को और वृंदा देवी से प्रार्थना की कि हे वृंदा देवी, मैं राधा कृष्ण के लीला दर्शन करने का बहुत इच्छुक हूँ, तो कृपया मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो वृंदा देवी ने कहा, लेकिन इस शरीर में तो नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर तो पुरुष का शरीर है और यहाँ पे तो केवल गोपियों का अधिकार है जो जाके वो उस लीला का दर्शन करें राधा कुंड के तट पर। पर कोई बात नहीं, इसके लिए उपाय भी है, तो आओ मेरे साथ। तो वृंदा देवी, जैसे हम पहले बता चुके यहाँ के ब्रज की क्या है, मंदिर की प्रेसिडेंट है ना, तो सारी योजना यहाँ पर बनाती है, सारी व्यवस्थापन करती है यहाँ। तो नारद मुनि को लेकर आई कुसुम सरोवर, यहाँ पे इसी सरोवर में, और यहाँ पे कहा कि नारद जी आप यहाँ पर स्नान कीजिए। और नारद जी जब कुसुम सरोवर में गए स्नान किया, बाहर आए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि मेरा शरीर बदल गया है, एक गोपी का शरीर है। तो अभी जाकर स्नान मत कीजिए, अचानक कोई गोपी बन गए तो फिर समस्या हो जाएगी, बेलगाम में आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो नारद मुनि जब गोपी के रूप में प्रकट हुए बाहर आए तो वृंदा देवी उनको राधा कुंड ले गए और वहां उन्होंने राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन किया। और फिर कृष्ण भगवान ने नारद मुनि से कहा, जो कि गोपी रूप में थी, कि हे नारद, अभी आप यहीं पर निवास करना ब्रज में, और वहां उस अशोक वाटिका अशोक वन के पास निवास करना, वहीं तपस्या करना और वहीं भक्ति के ग्रंथों की रचना करना। तो नारद मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे काफी पहले एक श्राप मिला था कि आप सारे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान में एक जगह आप टिक नहीं रह नहीं पाओगे, आपको भ्रमण करते रहना पड़ेगा। वो श्राप किसने दिया था बताइए? दक्ष प्रजापति ने। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि उनको 11,000 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया था और वो घर छोड़ के चले गए थे। अब राज संभालने वाला कोई रहा नहीं, इतनी जायदाद, इतना राज, ये वो, इतना आगे काम करना है, प्रजा उत्पत्ति करनी है, क्योंकि दक्ष जो है वो एक प्रजापति है, उनकी सेवा है प्रजा उत्पत्ति करके ब्रह्मांड में सारे जीवों को भरा देना। तो उन्होंने क्रोधित होकर नारद मुनि को श्राप दिया, मैं श्राप देता हूं कि आप किसी एक जगह में रुक नहीं पाएंगे ज्यादा समय के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में कि हमें भी ऐसे कई ब्रह्मचारियों के माता पिता के श्राप मिले हैं, इसलिए हम एक जगह ठहर नहीं पाते। हम सारे पृथ्वी भर भ्रमण कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, ये एक वरदान है। तो नारद मुनि ने भी ये सोचा कि एक वरदान है कि हम एक जगह रह नहीं पाएंगे, प्रचार करते करते घूमेंगे फिरेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहेंगे। तो ये श्राप था कि सारे ब्रह्मांड में आप कहीं भी एक जगह अधिक समय के लिए नहीं रह पाएंगे। तो नारद मुनि ने जब ऐसे याद दिलाया कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये ब्रज है, ब्रज तो भौतिक ब्रह्मांड का अंश है ही नहीं, ये तो साक्षात मेरा धाम है, ये तो आध्यात्मिक जगत है। ब्रज को कभी भौतिक ब्रह्मांड का, भौतिक जगत का अंश नहीं समझना चाहिए। इसलिए दक्ष प्रजापति का श्राप जो है वो भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत के भीतर लागू होता है, और ये तो भौतिक जगत का अंश नहीं है, इसलिए उनका श्राप यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर निडर होकर आप तपस्या कीजिए। फिर वो गोपी जो कि नारद मुनि थे वो यहाँ पर आए, वृंदा देवी ने फिर से उनको यहाँ स्नान कराया। स्नान करके जब वापस आए तो पुनः उनका नारद मुनि का रूप आ गया। फिर वो यहाँ नारद कुंड के स्थान में, नारद कुंड तो नाम उसके बाद हुआ, और वहां पर बैठे, तपस्या की उन्होंने, और वहां उन्होंने नारद भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों की रचना की। हम रावल में भी ये कथा सुन रहे थे कि श्रीमती राधा रानी के बाल रूप को देखने के पश्चात भाग भोर होकर यहाँ पर नारद जी आए थे और उन्होंने नारद भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये सारे स्थान यहाँ पर हैं। अब केवल इन स्थानों का चिंतन करते हुए, जो कथा हमने सुनी है उस कथा के ऊपर चिंतन मनन करते हुए या हरि नाम का जप कीर्तन करते हुए हमें धीरे धीरे से चलना है। तो कृपया पुनः हम दोहराएंगे कि कृपया आप सब एक साथ में चलिए, इधर उधर अलग से मत जाइए। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, गोवर्धन परिक्रमा की जय, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है आपके? हाँ। अस निवासम देहि गोवर्धनत्वम रघुनाथ दास गोस्वामी के विरचित वो जो भजन है वो हम कल गाएंगे। हम वो सोच रहे थे गाना चाहिए, परंतु समय इतना कम है, परिक्रमा भी पूरी करनी है, इतने बड़ी संख्या में भक्त हैं, तो कैसे समय का एडजस्टमेंट हो पाएगा वो देखना होगा। फिर भी प्रयास करेंगे, अगर आज ज्यादा हम समाप्त कर सकते हैं परिक्रमा तो कल हो सके हम करेंगे। तो हमने उसको जेरोक्स करके भी रखे हैं कागज, लेकिन देखते हैं। पर पास में यहाँ इस्कॉन कॉर एक छोटा सा मंदिर है, आप जैसे ही यहाँ इस मार्ग से बाहर जाएंगे और परिक्रमा पथ पर दाहिने घूमेंगे, वहीं पर पास में राधा दान वन बिहारी मंदिर है, यहाँ पर भी राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। और यहाँ वो भक्त आए थे, वो पर्ची यहाँ की दे गए हैं, लेकिन मंदिर बहुत छोटा है और 400 भक्त अगर इस छोटे से मंदिर में जाने लगे तो वहां एक घंटा लग जाएगा। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि वहां अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही हम प्रणाम करके दर्शन करके हम निकल जाएंगे। तो वहां वन बिहारी मंदिर है और वहां जो बाबा जी रहा करते थे उन्होंने हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी को वो दान में दिया, इसलिए वो इस मंदिर को, उनके शिष्य जो है उस मंदिर को संभाल रहे हैं। कई लीलाएं हैं लेकिन और समय हमारे पास नहीं है, आगे चल के कभी हम देखेंगे। और अगर आप ज्यादा इनके बारे में सुनना देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा समय के लिए कभी आना होगा। हरे कृष्णा। नारद जी शिव जी के पास क्यों गए राधा कृष्ण की लीला देखने के लिए? राधा कृष्ण के पास सीधे क्यों नहीं गए? क्योंकि वो भी कृष्ण भक्त हैं। नारद मुनि तो हैं कृष्ण भक्त, वैकुंठ भाव में हैं, परंतु वो जानते थे कि शिव जी भी महान वैष्णव हैं, तो इसलिए वो शिव जी के पास गए। और वो जानते थे कि शिव जी दिक्पाल हैं, ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए शिव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे चल के चकलेश्वर महादेव में इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा
साइकिल रिक्शा में।
हरे कृष्णा, जो बुजुर्ग है जिनको चलने में कष्ट होते हैं या बच्चों की दृष्टि से आप साइकिल रिक्शा ले सकते हैं कि जो आप अपने साथ चलेंगे, लेकिन